विजिबल डॉक्टर्स थेरेपी। आपने विजिबल डॉक्टर्स का तो नाम सुना है, लेकिन एक इनविजिबल डॉक्टर्स है, इसकी थेरेपी क्या है और इस थेरेपी से कैसे आप ठीक हो सकते, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और अनुभव कब हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में था, यही देखता था कि सारे लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर उनको पेन किलर दे देते हैं, पेन किलर का साइड इफेक्ट भी होता रहता है और बीमारी बढ़ती जाती है। कितनी बार पेन किलर लेना पड़ता है सिर्फ दर्द की फीलिंग ना हो, दर्द तो वहां रहता ही है। तो आज आपको कोई भी दर्द होता है डॉक्टर पेन किलर दे देते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ऐसी बात है जो जा नहीं रही है, वो बार बार आपको दुख दे रही है, आप उदास रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो उसके लिए कौन सा किलर है? आज मेडिकल साइंस के पास उसका किलर है नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सुला देंगे, सोने की दवा दे देंगे, सोचे ही मत, लेकिन फिर जब नींद खुलेगी तो बात तो वही आएगी ना। तो ये समस्या आज के मेडिकल साइंस में है और मैं भी इसका उपाय ढूंढता था। एक टेलीग्राम मेरे घर पे गया था जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था और कमांड हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। एक टेलीग्राम घर पे तभी भेजा जाता है जब कुछ हालत सीरियस हो जाती है, डेंजरसली इल लिस्ट में डाल करके हमारे वाइफ को इंटीमेट किया गया कि आई एम प्लेस्ड अंडर डेंजरसली इल लिस्ट। और उस समय हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था और उस समय का फोटोग्राफ कुछ ऐसा था कि तो मैं बाहर आके खींचवा और यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारा, जो आपके मैं आज सामने हूं। जब हॉस्पिटल में था तो परमात्मा से यही क्वेश्चन किया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, मैं क्यों बीमार पड़ा। भगवान ने मुझे उसका आंसर दिया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्होंने खुद मेरे से क्वेश्चन किया कि आप बताओ, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में अगर सप्लाई नहीं है, करंट नहीं है, या करंट आए लो वोल्टेज में आए, तो क्या आपका फ्रिज चलेगा? फ्रिज चलेगा? नहीं चलेगा। तो भगवान ने हमें एक शरीर फ्रिज दिया है, शरीर भी क्या है, फ्रिज की तरह है, और इस फ्रिज में परमात्मा ने आंख, कान, नाक, गला, दिल, आपका लंग्स, एट, पैंक्रियाज, लिवर, किडनी, बोन्स, मसल्स, ब्लड, सारी चीजें दिया है, इस फ्रिज में रखा हुआ है। अब इस फ्रिज में ठीक रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अगर आपके घर में 100 वोल्ट की एनर्जी आ रही है तो क्या ट्यूबलाइट जलेगा? नहीं जलेगा। उसी तरह हमारे बॉडी में अगर एनर्जी लेवल कम है, अगर वोल्टेज कम है, तो क्या होगा, हमारा शरीर का फ्रिज चलेगा नहीं, फिर कभी आंख खराब होगा, कभी कान खराब होगा, कभी ब्लड खराब होगा, सारी बीमारियां होती रहेगी। तो एक तो बीमारी का कारण पता चला कि एनर्जी की कमी, एनर्जी है लेकिन लो वोल्टेज में है। दूसरा, जब मैं उपाय पूछा परमात्मा से कि हमें उपाय बताइए कैसे ठीक हो सके, कौन से एक्सरसाइज करें, तो परमात्मा ने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत देवभूमि थी, भारत पे देवी देवताएं रहते थे, श्री राम श्री कृष्ण भी इसी धरती पे थे, आसमान में नहीं थे, कोई आसमान में स्वर्ग नहीं था, यही था। और उस समय देवताएं लोग 150 साल जिंदा रहते थे और शरीर अपने आप छोड़ते थे, उनको शरीर छोड़ने की ताकत थी, जैसे हम वस्त्र उतारते हैं वैसे शरीर को छोड़ते थे और हेल्दी रहते थे हमेशा। कोई भी देवताओं का फोटोग्राफ आप बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, बूढ़ा दिखाई दिया कोई भी देवताओं का फोटोग्राफ, लक्ष्मी नारायण का हो या राम का हो या कृष्ण हो, उनका बूढ़ा तस्वीर कभी दिखा है आपने? हमेशा यंग तस्वीर है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है वो कितना साल जिंदा रहे, 150 साल। तो 150 साल जिंदा रहे वो कौन से एक्सरसाइज करते थे? एक क्वेश्चन हमें हमसे परमात्मा ने पूछा, क्योंकि आई फील लक्की व्हेन आई टॉक विद द गॉड। मेरे जब ईश्वर से बात होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं लकीस्ट फील करता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। कोई मुझे जाने या ना जाने, मुझे जानने वाला कौन है? गॉड है, और गॉड मेरे से बात करता है। और उसने क्वेश्चन किया कि बताओ वो कैसे स्वस्थ रहते थे, वो टेक्नोलॉजी क्या थी? मुझे जवाब मिला नहीं। उन्होंने बोला सोचो, सोच के बताओ। तो मैं इंटरनेट सर्च कर रहा, इंटरनेट सर्च करके बहुत सारी थेरेपीज देखी, लेकिन हमें देवताओं के बारे में कोई थेरेपी नहीं मिली। फिर जब मेडिटेशन में बैठा तो परमात्मा से यही क्वेश्चन किया, हमें बताइए देवताएं कौन सा एक्सरसाइज करते थे। उन्होंने कहा ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक समय में आप भी क्या थे, स्वर्ग में थे, जन्म लेते लेते अभी इस मृत्यु लोक में है। कितने जन्म लिए ये तो आपको पता होना चाहिए। मैंने, मुझे तो पता नहीं है, मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था इसका आंसर, नहीं मिला। परमात्मा ने जवाब दिया कि आज के डेट में इंटरनेट पे देवताएं कौन सा एक्सरसाइज करते थे अवेलेबल होगा? आज के साइंस को भी ये बात पता नहीं है कि देवताएं कौन सा एक्सरसाइज करते थे, तो इंटरनेट पे कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा? तुम अपने कंप्यूटर को मेरे नेट से कनेक्ट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। फिर हम मेडिटेशन में बैठे, बाबा मुस्कुराए और आवाज आई कि देवताएं न्यूरोबिक्स किया करते थे। अभी न्यूरोबिक्स वर्ड मेरे लिए अजूबा वर्ड था कि न्यूरोबिक्स क्या होता है। मैंने एक्साइटमेंट के कारण फिर इंटरनेट पे सर्च किया न्यूरोबिक्स, गूगल पे सर्च किया और न्यूरोबिक्स से रिलेटेड कई सारी साइट मुझे मिली, लेकिन उसमें भी जो एक्सरसाइज दिए हुए थे उसमें एक्यूप्रेशर था, मेडिटेशन था, रिलैक्सेशन था, और डिफरेंट लेफ्ट ब्रेन के एक्सरसाइज थे, राइट ब्रेन के एक्सरसाइज थे, कोई भी काम को अलग अलग ढंग से करने का तरीका बताया गया था, राइट ब्रेन को कैसे एक्टिव करना है, लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करना है, बस यही जानकारी मुझे मिली, लेकिन वो जानकारी मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। तो फिर मैं मेडिटेशन में बैठा और मेडिटेशन में जब परमात्मा से बात होने लगी, फिर मैं क्वेश्चन किया कि एनीरोबिक्स क्या है, तो हमें फिर परमात्मा का मुस्कुराता हुआ एक चेहरा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि फिर तुम तो इंटरनेट पे ही सर्च कर रहे थे, यह जानकारी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो उन्होंने पूरा मुझे न्यूरोबिक्स के बारे में बताया कि न्यूरोबिक्स क्या एक्सरसाइज होता है। न्यूरोबिक्स इनफैक्ट देवताओं का लाइफ स्टाइल था। जब इस धरती पे स्वर्ग था तो श्री कृष्ण श्री राधे, आप सुना होगा, रास करते थे। रास सुना है आपने? श्री कृष्ण बांसुरी भी बजाते थे और रास अकेले नहीं करते थे, उनके साथ में क्या होता था, पूरा ग्रुप होता था। तो रास ही नैरोबिक एक्सरसाइज था। अब उसमें इतनी बड़ी हेल्थ की साइंस छिपी है ये बात मुझे पता नहीं थी। ये बात हमें परमात्मा ने बताया कि जब श्री कृष्ण रास करते थे तो रास में मुद्राओं का यूज होता था। आप देखें, कोई डांस करता है तो क्या होता है, मुद्रा है ना, और रास जल्दी जल्दी नहीं होता है, रास एक रिदम में होता है, इसलिए उसको रास कहा जाता है। रिदमिक डांस, एक रिदम में डांस होता है, उसमें हाथों की मुद्राएं होती है, पैरों का स्टेपिंग होता है, और इनका कोऑर्डिनेशन इतना एक्यूरेट होता है कि हमारे पूरा न्यूरो सिस्टम का एक्सरसाइज होता है और न्यूरो सिस्टम में पूरा हाई वोल्टेज एनर्जी आ जाती है, इसलिए इस एक्सरसाइज को न्यूरोबिक्स कहा जाता था। जैसे आज का एरोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक डांस है। एरोबिक डांस में क्या करते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं, म्यूजिक धम 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 बजेगा और उतना ही आप कूदेंगे, उतना ही कूदेंगे तो आपका क्या होगा, सांस ज्यादा चलेगा, एयर ज्यादा शरीर के अंदर जाएगा और ये हो जाएगा आपका एरोबिक डांस, और एरोबिक एक्सरसाइज हो जाए, तो इससे आपके न्यूरो सिस्टम में हाई वोल्टेज हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। डांस करने के बाद में आपको एक छोटी सी बात कोई बोल दिया, बस सारी एनर्जी खत्म हो गई, बैठ गए, आ गया एनर्जी, आपने तो बहुत एरोबिक एक्सरसाइज किया। तो एनर्जी हमारे न्यूरो सिस्टम में पूरा हाई वोल्टेज में रहे, ताकि हमारे शरीर के सारे अंग ठीक ढंग से काम करें। तो उनको भी पता नहीं होता, वो तो रास एक लाइफ स्टाइल था ना। श्री कृष्ण को नहीं पता था कि वो डांस एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं, इट वॉज ए लाइफ स्टाइल। और उसमें आप देखिए, जब बांसुरी बजाते थे तो किसका एक्सरसाइज होता है? आज लोग प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, फॉर व्हाट? लंग की एक्सरसाइज के लिए, ब्लड को क्लीन करने के लिए, यही पर्पस है ना। आप देखिए, जब कोई बांसुरी बजाता है तो उसकी लंग्स की एक्सरसाइज कैसे होती है? यह जाती आती है कि नहीं आती है? जब भी कोई बांसुरी बजाएगा तो लंग्स की एक्सरसाइज होगी कि नहीं? दैट इज मोर देन प्राणायाम। तो उस ऑटोमेटिकली प्राणायाम है, एट द सेम टाइम माइंड की एनर्जी इन्वॉल्व है। अभी आप जो प्राणायाम करेंगे, हमें स्वस्थ रहना है इसलिए प्राणायाम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से नाक से सांस ले लिया, इस सांस से लिया, जल्दी जल्दी पेट हिलाया, है ना, दिमाग कहीं और हिल रहा है, सांस ले रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, माइंड बॉडी का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बस प्राणायाम कर रहे हैं, किस लिए? बस कर रहे हैं, ठीक रहना है इसलिए। इसके बाद भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, क्योंकि माइंड की एक्सरसाइज नहीं। यू आर नॉट एंजॉइंग द एक्सरसाइज, यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन वहां पे जो रास होता था, जो बांसुरी कोई बजाता है तो उसका माइंड और बॉडी क्या है? पूरा सिंक्रोनाइज है, पूरी एनर्जी फ्लो हो रही है, हार्ट और लंग्स दोनों ही एक रिदम में काम कर रहे हैं, एक रिदम में एनर्जी का फ्लो और ब्रीदिंग का फ्लो हो रहा है। और जब डांस होते थे, रास होता था, तो उस समय रंग भी आता था, रंग, जैसे आजकल डांस होते हैं तो क्या होता है, तरह तरह की किरणें आती है कि नहीं आती है? आती है। तो उस समय भी रंग आते थे, लेकिन वो कैसे आते थे? वो आते थे अलग अलग डिफरेंट प्रकार के डायमंड्स और जेम्स होते थे जो लगे होते थे, उनसे उनके शरीर के ऊपर रंग आते थे, ऐसा डायमंड देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस समय डायमंड और जेम्स इतने भरपूर मात्रा में थे कि वो उनसे एनर्जी उनके शरीर पे आती थी और उनका पूरा एनर्जी सेंटर एक्टिव रहता था। और जब एक्टिव होता था तो क्या होता था, उनके बॉडी के सेल्स वाइब्रेट करते थे और एनर्जी पूरा पूरा फ्लो होती थी। और साथ साथ नाद भी होता था, रास ऐसे ऐसे ही कोई डांस नहीं होगा, म्यूजिक भी तो होगा ना, तो म्यूजिक से जो आवाज निकलती थी, उस आवाज के वाइब्रेशन से बॉडी के सेल्स में जो वाइब्रेशन पैदा होते थे, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को जीरो कर देते थे। मेटाबॉलिज्म रेट जीरो हो जाता था, जिसके कारण वो हमेशा यंग दिखते थे, कोई चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती थी, बुढ़ापा नहीं होता था। तो रास, रंग और नाद के द्वारा अननोइंगली खेल खेल में वो एक्सरसाइज होता था, एंड दैट वॉज लाइफ स्टाइल ऑफ दैट पीरियड। और इस लाइफ स्टाइल को ही क्या कहा जाता था, न्यूरोबिक्स कहा जाता, असली न्यूरोबिक्स वही था। टाइम पास होता गया, सतयुग बीत गया, त्रेता युग आया, श्री रामचंद्र जी का राज आया, तो रास खत्म हो गया। इसलिए श्री कृष्ण को रास करते हुए दिखाते हैं, श्री रामचंद्र जी को रास करते हुए नहीं दिखाते हैं। कभी उन्होंने सीता के साथ रास नहीं किया, लेकिन राधा कृष्ण का रास फेमस है। तो रास खत्म हो गया, रास खत्म हो जाने से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और एनर्जी लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन होने से उनकी आयु भी कम हो गई, जो आयु सतयुग में 150 साल होती थी, वो त्रेता युग में क्या हो गई, रिड्यूस होकर के 125 साल हो गए। सतयुग और त्रेता में भी कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि उस समय भी न्यूरोबिक एक्सरसाइज होता था, रास के फॉर्म में नहीं होता था, राग रंग और नाद के फॉर्म में होता था। गोल्डन एज में क्या था, सतयुग में रास रंग और नाद ये तीनों था, और सिल्वर एज जब आया उसमें क्या हो गया, राग रंग और नाद। राग मतलब गीत गाकर, गीत गाते हैं। उसमें भी क्या होता है, सुर, सुर में भी क्या होता है, लंग का एक्सरसाइज होता है। आप देखो कोई भी गीतकार सुरीला आवाज में गीत गाता है तो उस सांस की गति कैसी होती है, हृदय में चलती है कि नहीं चलती है। तो उस समय बांसुरी के द्वारा होने लगा, और उस तेतरु में किस चीज के द्वारा होना, आवाज के द्वारा, राग को आवाज, अलग अलग प्रकार के राग निकलने लगे। और रंग और नाक तो थी क्योंकि प्रचुर मात्रा में रत्न उपलब्ध थे। सतयुग और त्रेता में बीमारियों का नामो निशान नहीं था कि बीमारी क्या चीज होती है। कंप्लीट हेल्दी वेल्दी वर्ल्ड था, पीस प्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी थी। लेकिन जैसे दिन के बाद रात होता है, वैसे ही हेवन के बाद तो धरती से हेल आना ही है। सतयुग त्रेता खत्म हुआ, द्वापर शुरू हो गया। जब द्वापर शुरू हो गया तो न रास रहा, न रंग रहा, न नाद रहे। ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग इस दिशा में चले गए, पता ही नहीं चला। जो तीनों का कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन टूट गया। टूट जाने के कारण क्या हो गई, आयु भी कम हो गई और बीमारियां भी शुरू हो गई। जब बीमारियां शुरू हो गई तो उस समय रिसर्च कैसे करेंगे, कोई भी रिसर्च किस चीज के ऊपर होता है, कोई डेटा अवेलेबल होता है, रिसर्च हाउ यू विल डू द रिसर्च, रिसर्च के लिए कोई डेटा चाहिए ना आपको, कोई प्रूफ तो चाहिए ना कि हाँ यहाँ पे हेल्दी लोग रहते थे, यू मस्ट गो एंड सी। जैसे हमारे देश के लोग जाते हैं सीखने के लिए कि उस कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, पुलिस का नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यू गो एंड गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम देयर टू लर्न द थिंग्स, उनमें क्या है जो हमारे में नहीं है। तो द्वापर जब धरती पे आया, बीमारियां शुरू हो गई, तो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग ऋषि महर्षि कहलाते थे, उनके दिमाग में आया कि अरे ये बीमारी क्यों हो रही है, इनका उपाय क्या है। तो उनके लिए रिसर्च का लिए डेटा क्या उपलब्ध था, इट वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ डेटिस, गोल्डन और सिल्वर एज में। उस समय तो इमीडिएट हिस्ट्री था ना, द्वापर युग के लिए इमीडिएट हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एज एंड सिल्वर एज। तो उन्होंने उस समय उन देवताओं के लाइफ स्टाइल के ऊपर स्टडी किया, महर्षि पतंजलि ने स्टडी किया, महर्षि चरक ने स्टडी किया, महर्षि सुश्रुत ने स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की बांसुरी से जो लंग्स की एक्सरसाइज होती थी उसमें एक रहस्य था, इसलिए उन्होंने प्राणायाम निकाला। प्राणायाम कहां से निकला कि किसी को पता नहीं है, परमात्मा ने मुझे बताया, और ये दुनिया को मैं बता रहा हूं। अगर दुनिया को पता नहीं है कि प्राणायाम कहां से निकला तो ये परमात्मा से सीख कहां से निकला, ये कृष्ण की बांसुरी से वो प्राणायाम का रहस्य निकला। और उन्होंने पूरा प्राणायाम निकाला। फिर देवताओं के जो रास के रास होते थे, उस रास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता था, पोस्चर होता था। उस डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से डिफरेंट डिफरेंट आसन निकले। आसन होता है ना, ये आसन वो आसन, हाथों की मुद्राएं से आज मुद्रा है। तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, रंग, और डायमंड खत्म हो गया, वो जेम्स खत्म हो गया, तो रंग कहां से निकले, आर्टिफिशियल लाइट, वो कलर आने लगे। फिर नाद, ध्वनि, अब वो ध्वनि तो उर नहीं रहा जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाए, तो कौन सी ध्वनि शुरू हो गई, मंत्रों की ध्वनि, मंत्र के, ये मंत्र जितने निकले वो कहां से निकले, उस ध्वनि से निकले। रिसर्च हुआ, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्रों से एक वाइब्रेशन निकलता है, जो वाइब्रेशन आपके शरीर के सेल्स को वाइब्रेट्स करता है और रेज करता है। आज महामृत्युंजय जप है, महामृत्युंजय मंत्र कहां से निकला, उस नाद के ऊपर रिसर्च हुआ। और जो महामृत्युंजय मंत्र में जो आप उच्चारण करते हैं, सही प्रकार से आप उच्चारण करें तो आपके बॉडी के सेल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे, मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो जाएगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी, ये सीक्रेट है। लेकिन आज के लोगों को मंत्र जाप करने का भी टाइम नहीं है, पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी हमारे लिए महामृत्युंजय जाप कर दीजिए, इतना दक्षिणा ले लीजिए, तो पंडित जी की आयु बढ़ेगी कि आपका आयु बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, जो करेगा उसका बनेगा। تو راس رنگ اور ناد ان تینوں سے جو سسٹم پیدا ہوا اس کے اوپر کافی سارا ریسرچ ہوا اور برانچز ہو گئے. مہرشی پتانجلی نے اس سمے راج یوگ کی کتاب لکھی, راج یوگ, اور اس راج یوگ میں انہوں نے 8 انگ بتائے, یم, نیم, آسن, پرانیام, پرتیاہار, دھیان, دھارنا, سمادھی. یہ اشتانگ راج یوگ انہوں نے بتایا, کیونکہ آسن اور پرانیام کے لیے یم اور نیم کی مہتوپورن آوشیکتا ہے. لیکن آج یم نیم تو تاکتے رکھو, آسن پرانیام بھی جلدی جلدی میکانیکلی کرو, ہے نا, پرتیاہار, دھیان, دھارنا, سمادھی تو ابھی اوپر ہی ہے, وہ تو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. صرف دو چیز کو لے کر کے دنیا ابھی جان رہی ہے, آسن کیا ہے, پرانیام کیا ہے, اور اسی کو نام کر رکھ دیا راجوگ بھی ختم ہوگا, صرف یوگا ہوگی. تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ جو 100% فائدہ ہونا چاہیے ہوگا, اور وہ یوگا میکانیکل ہونے کے کارن, ایک پیشنٹ ہے ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے, اس کو آپ کہیے کہ آپ یوگا کرو, پیٹ ہلاؤ, الگ الگ ناکوں سے سانس لو, وہ بےچارہ کو سانس کی نلی لگی ہوئی ہے, خون چل رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ کرے گا, کیونکہ میں نے وہ دیکھا اپنے ہاسپٹل میں, کینسر وارڈ میں ڈیلی ایک ویکتی تو منیمم ہے جو مرتا تھا, کبھی کسی دن دو آدمی مر گئے, کبھی چار مر گئے, اس طرح ہم نے موت دیکھ اپنے آنکھوں کے سامنے, ہمارے روم میں تین چار موت ہوتے تھے. ایک تو ایسا پیشنٹ تھا کہ اس کو پتا چلا کہ اس بیڈ والا ویکتی مر گیا ہے, واز ویری ینگ, وہ صرف ڈائگنوسس کے لیے آیا تھا, اس کو پتا چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا, میں کینسر وارڈ میں آ گیا, اور ود ان 48 آورس مر گیا. سر کی طرح تو یہ ڈر من کے اندر جو پیدا ہوتا ہے, وہ ڈر ہمارے باڈی کے سیلس کو کتنا جلدی کل کرتا ہے, چاہے آپ کتنا بھی پیٹ ہلا لو, کتنا بھی آسن پرانیام کر لو, لیکن یہاں ڈر گھس گیا نا, ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ویکتی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, کتنا بھی اس کو دوا دے دے. اسی لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, وی ٹریٹ ہی کیورس, بولتے کہ نہیں بولتے. تو یہ ٹیکنالوجی, نیوروبکس, وہاں کی یہ ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے جو ٹیکنالوجی تھی وہ دواپر آتے آتے الگ الگ ہو گیا, صرف آسن اور پرانیام ہونے لگا. لیکن اس سمے یم نیم کا بھی لوگ پالن کرتے تھے, آپ دیکھیے اس سمے کے لوگ یم نیم سب کا پالن کرتے تھے, اس لیے انہوں نے ایک بنا دیا ودھی کہ ہمارے آیو کو چار بھاگوں میں بانٹ دیا. پہلا برہمچر, برہمچر اوستھا میں آپ رہ کر کے اسٹڈی کرو, مائنڈ کو انلائٹن کرو, کیونکہ اس میں یم نیم آسن پرانیام پرتیاہار دھیان دھارنا سمادھی ایک پورا سارا چیز تھا. اس لیے اس سمے اسٹوڈینٹ لائف میں بیماری بھی نہیں ہوتی تھی, لوگ گرکل میں رہتے تھے اور یہ سارے اسٹڈی کرتے تھے. اس سمے ان کی میموری بھی کتنی شارپ تھی, ان کے اس سمے ان کے منتر کتنے یاد ہوتے تھے, پورا وید کا وید یاد ہوتے تھے, رشائیں یاد ہوتی تھی وید کی, کتنی اچھی میموری تھی. پھر برہمچرچ کے بعد گرہست آشرم کا پالن کیجیے, گرہست آشرم میں جو گرہست کا دھرم ہے اس کو پالن کیجیے, گرہست آشرم بنایا گیا. پھر اس کے بعد وانپرست, جو آپ نے انرجی لیول ڈاؤن کر دیا گرہست میں وکاروں کے وشیبوت ہو کر کے, اس کو وانپرست میں جا کر کے اس کو سنچے کیجیے. اور پھر سنیاس, سنیاس کا مطلب ہوا پورا ڈیٹیچمنٹ, کیونکہ ڈیٹیچمنٹ کل کا مین جو بتایا تھا ہم نے کہ ہم جو ایلنس ہے اس سے ویلنس کیسے ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اٹیچمنٹ, اٹیچمنٹ سے آپ کے من میں اچھائیں پیدا ہوگی, اپیکچھائیں پیدا ہوگی, وہ جب پورتی نہیں ہوگی تو آپ کو کرودھ آئے گا, وکاروں کی اتپتی ہوگی, جب کرودھ آئے گا تو آپ کی بدھی ناش ہو جائے گی, بدھی ناش ہو جائے گی تو آپ کا کیا ہو جائے گا, سمرتی بھرنس ہو جائے گا, میموری ختم ہو جائے گی, میموری ختم ہو جائے گی تو آپ کا ناش نشچت ہے, آیو ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہماری سمرتی نشٹ ہو گئی ہے اس سمرتی کو ریگین کرنا इसलिए वो संन्यास धर्म बनाया गया। हमारे जीवन की चार अवस्थाएं बताई गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ताकि संन्यास लेकर के हम वो एनर्जी धारण करें ताकि हम नेक्स्ट बर्थ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। लेकिन वो भी धीरे 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 टाइम आते आते वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और कलयुग आते आते वो एरोबिक पूरा कंप्लीट एरोबिक में बदल गया, एरोबिक डांस एरोबिक डांस में बदल गया। ना कोई ताल है, ना कोई सुर है, ना कोई राग है, बस जैसे गीत गा दिया, नाक से गा दो, मुंह से गा दो, कैसे भी गा दो, कैसे भी पैर पटक लो, आपका वो क्या हो गया, डांस हो गया। तो ये आज आते आते इसलिए बीमारी बढ़ गई, बॉडी के रिदम खत्म हो गए, एनर्जी लेवल डाउन हो गई। इस चीज का जब रहस्य मुझे पता चला, मैंने परमात्मा से यही पूछा कि अब बताइए आज कोई रास कोई करेगा, उपाय क्या है, आपने तो नेरोबिक्स बताया। तो परमात्मा ने बताया कि देखो नेरोबिक्स में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कामयाब की चीज है जिसका अभी आप यूज कर सकते हो और पेशेंट स्पेशली यूज कर सकता है, उससे उसकी बीमारी ठीक होगी। और वो चीज है हैंड जेस्चर, हाथों की मुद्राएं। तो इसलिए जो नेरोबिक एक्सरसाइज, जो इनविजिबल डॉक्टर थेरेपी, जो परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया इसको डिजाइन करने के लिए, उसमें हमने लिया फर्स्ट हैंड जेस्चर्स, हाथों के मुद्राओं का। दूसरा रंग, अब रंग तो नहीं मिलेंगे, हीरो तो देखने के नहीं मिलता, रत्न पहनने के नहीं मिलते, तो वो कहां से एनर्जी आएगी। इसलिए एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, वो भी आपके शरीर को पूरा होरोस्कोप देख करके, ग्रहों की स्थिति को देख करके आपको एडवाइस करते हैं कि आपके बॉडी में इस रंग की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो इस रंग का आप जेम्स धारण करो। लेकिन वो भी कहां है, वो भी इतना कॉस्टली है, कौन खरीदेगा, डुप्लीकेट्स निकल जाए, डुप्लीकेट्स में क्या फायदा होगा। तो परमात्मा ने बताया सबसे अच्छा रंग, जो सतयुग के लोगों के पास भी नहीं था, वो रंग अभी मौजूद है इस समय, और वो रंग है गॉडली एनर्जी का रंग, ईश्वरीय ऊर्जा का रंग, जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में, अगर उस ऊर्जा को कैच किया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। लेकिन वो कैच करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि साइंस के पास वो ताकत ही नहीं कि उस एनर्जी को कैच कर सके। उस एनर्जी को कैच करने के लिए सिर्फ ताकत है तो आपके बुद्धि में है, इंटेलेक्ट में है, दिमाग में है। और जब आपकी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, उस एनर्जी को कैच कर सकती है, और उस एनर्जी को जब कैच करेगी अलग अलग रंगों में, तो शरीर भी आपका क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आप निरोग हो जाएंगे। और नाद, साउंड, बहुत तरह के आजकल साउंड निकले हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड जो परमात्मा जब धरती पे आया 1937 में और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया, तो उस समय सिर्फ एक ही नाद सिखाया और वो था ब्रह्म नाद। और ब्रह्म नाद में क्या आता है, ओम की ध्वनि। इसलिए इस संस्था का सबसे पुराना नाम क्या था, ओम मंडली, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं था। ये नाम भारत में जब आए ब्रह्मा बाबा, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के इसका नाम रखा। मेन है रास, रंग और नाद। तो रास, रंग और नाद में ब्रह्म नाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नाद है। ब्रह्म नाद में ओम की ध्वनि आती है, और वो इसीलिए हर एक मंत्रों का उच्चारण किससे शुरू होता है, ओम से शुरू होता है। न सिर्फ हिंदू धर्म में, बल्कि आप इस्लाम में भी आप सुबह सुबह आवाज आती है इस शब्द की, अल्लाह अकबर सुनाई देता है, वो की ध्वनि। हर एक धर्म में कहीं ना कहीं ओ का उच्चारण होता है, क्योंकि ब्रह्म नाद का बिगिनिंग किस चीज से होता है, ओ से होता है। और वो क्या है, انگلش کے جو فائیو واویلس ہیں اے ای آئی او کیو، وہ پانچوں کو ایک مین فریکوینسی ہے، اوسط فریکوینسی ہے. فرسٹ واویلس کیا ہوتا ہے؟ اے. لاسٹ واویلس کیا ہوتا ہے؟ کیو. اے پلس کیو کو ڈیوائڈ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اوسط کیسے نکالتے ہیں؟ فرسٹ اینڈ لاسٹ کو جوڑ دیتے ہیں، منیمم پلس میکسیمم اور ڈیوائڈیڈ بائی ٹو، دیٹ از مین. اسی طرح اے پلس یو ڈیوائڈیڈ بائی ٹو، مین فریکوینسی ہو جاتا ہے او. اور پلس او کیا بن جاتا ہے؟ او بن جاتا ہے. تو جب او کی دھونی کرتے ہیں اور او کی دھونی کرتے سمے آپ کے لپ ہے، لپ کا شیپ بھی او جیسا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو دھونی نکلے گی صحیح ڈھنگ سے وہ آپ کے باڈی کے سیلس کو فریکوینسی کو ریز کرے گی. اس لیے او کی شروع، ہر ایک منتر کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ او سے. صرف ایک بار جیسے بول دیتے ہیں او بولا آپ نے، یہ لپ او جیسا ہوا ہی نہیں، تو اچارن غلط ہو گیا. اس لیے اچارن پہ وشیش نہیں. اس لیے منتروچار ودھی پوروک ہوتا ہے. آج کل منتروچار بھی ودھی پوروک نہیں ہوتا ہے. بہت کم آپ کو پنڈت ملیں گے جو منتر کا صحیح سے اچارن کرتے ہوں، اور وہ بھی منتر سنسکرت میں جو بنے ہوئے ہیں، وہ سارا فلسفی جو ہے کس چیز کا ہے؟ ناد پہ بنا ہے. تو راس رنگ اور ناد آپ دیکھیے کیسے الگ الگ ہو گئے ہیں، ہو گئے نا. اس لیے پرماتما بولا کہ ابھی وہ راس رنگ ناد تو ستجگ میں ہی ہوگا اچھا سے، لیکن ابھی ہیلنگ کرنے کے لیے جو ضروری ہے اس چیز کی ضرورت ہے آپ کو، کہ راس سے ہم نے مدرا لیا، رنگ سے جو پرماتما سے جو الگ الگ رنگوں کی انرجی آتی ہے اس کو آپ نے بدھی سے دیکھنا ہے، اور تیسرا ناد. ناد ایک سانسوں کے دوارا ناد اور ایک منہ کے دوارا ناد. تو سانس کی ایک بریدنگ پیٹرن ایسا وکست کرنا ہے. ان تینوں کو ملا کر کے ٹوٹل آٹھ نیوروبک ایکسرسائز پرماتما نے مجھے نمت بنایا یہ ڈیوائس کرنے کے لیے. اور اس آٹھ جو نیوروبک ایکسرسائز ہے آپ کو میں کراؤں گا، جس سے آپ کی کئی پرکار کی بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی. جو انکیوریبل ہے وہ بھی کیور ہو جائے گا. انکیوریبل ول بی کیوریبل، بیکاز ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وی ٹریٹ ہی کیور. سو کیور کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک کون ہے؟ پرماتما ہے. تو کیور کرے گا وہ. ابھی ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہیں لیکن انرجی نہیں دیں گے. آپ کو خون کی کمی ہے، بلڈ کی بوٹل چڑھا دیں گے، لیکن آپ کی انرجی کی کمی ہے، کیا انرجی کا بوٹل چڑھا پائیں گے؟ نہیں چڑھا پائیں گے. اس لیے وہ کیا کہیں گے؟ پرماتما کو یاد کرو، ہی ول کیور یو. لیکن وہ یاد کیسے کریں یہ تو پیشنٹ کو پتا ہی نہیں. اس لیے وہ بھی ٹیکنالوجی کو نام ہم نے رکھا ہے انویزبل ڈاکٹرز تھراپی، ہے نا. کیونکہ ٹریٹمنٹ اور کیور کے بیچ میں ایک ورڈ آتا ہے، ہیلنگ. اس لیے آج کل ورلڈ میں بھی کئی پرکار کے ہیلنگ تھراپی بھی چل رہی ہے، ہیلنگ انرجی بھی چل رہی ہے. کیور تک ابھی وہ بھی نہیں پہنچے ہیں. کیور تک صرف آپ کو نیوروبک پہنچائے گا، دوسرا کوئی نہیں پہنچائے گا. کوئی ویکتی کی تھراپی کام نہیں آنے والی ہے، کیونکہ کیور کس سے ہوتا ہے؟ جب آپ کا اندر کا ڈاکٹر کا کنیکشن سپریم ڈاکٹر سے ہو جاتا ہے، تب جا کے آپ کا کیور ہوگا. تو کیور کے لیے جو انویزبل ڈاکٹرز کی تھراپی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی تک آپ کو جسٹ میں ہسٹری بتایا کہ ہاؤ آئی کیم اپ ٹو ہیئر. ہم نے جو سیکھا وہ ایک، میں نے کوئی ریسرچ نہیں کیا، میں نے کوئی لیبوریٹری میں جا کر ریسرچ نہیں کیا، کیونکہ ریسرچ یہاں اندر ہوتا ہے، لیبوریٹری میں نہیں ہوتا ہے. نیوٹن نے لا آف گریویٹیشن لکھا، انہوں نے لیبوریٹری میں جا کر ریسرچ نہیں کیا. انہوں نے ایپل کو دیکھا، ایپل گر رہا ہے اور یہاں پہ ریسرچ ہوا، لا آف گریویٹیشن لکھ دیا. ایسا نہیں تھا کہ لا آف گریویٹیشن لکھنے کے پہلے سے اوپر کی طرف جاتے تھے، نیچے نہیں گرتے تھے. لا آف گریویٹیشن تب بھی تھا، ابھی بھی ہے اور سدا رہے گا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نیروبک ایک نئی فلسفی ہے، یہ تھا، اچھی فلسفی تھی، اس کا مجھے پتا چلا، یہاں ریسرچ ہوا پرماتما کی اچھا سے، اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. نہ میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، نہ کوئی میرے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے، لیکن میرے پاس جو ڈگری ہے وہ پرماتما کی ڈگری ہے، پرماتما کا اتھارٹی ہے، گاڈلی اتھارٹی ہے میرے پاس میں. और एक गॉडली अथॉरिटी पूरे विश्व को चैलेंज कर सकती है, विश्व के सारे डॉक्टर सीखेंगे इस चीज को, क्योंकि जो डॉक्टर को पता नहीं वो सुप्रीम डॉक्टर को पता है। तो अभी जो इनविजिबल डॉक्टर्स थेरेपी में जानेंगे उसको बारे में आपको मैं बता ही दिया। अभी जो सिर्फ जो एरोबिक और योगा है, एरोबिक और योगा में क्या है, सिर्फ ब्रीदिंग है, तीर लग गया निशाने पे तो लग गया, सिर्फ ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है। लेकिन एरोबिक में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग एक स्टाइल में है, उस पूरे साउंड के वाइब्रेशन से रिलेटेड है। और ब्रीदिंग के साथ में आपका हस्त की मुद्राएं हैं और जो परमात्मा से जो कलर्स आता है वो है। तो तीनों चीज है इसमें, आपका मुद्रा, रंग और ध्वनि, ये तीनों के समावय से आपका हमने नेरोबिक्स बनाया है। और हमारे बॉडी के तो सारे ऑर्गन है जो इस जो एनर्जी से ही तो चलते हैं। सेल्फ, सेल्फ का मतलब ही क्या होता है, जब हम सेल्फ की बात करते हैं सेल्फ का मीनिंग क्या है, एस का मतलब होता है स्पिरिचुअल, ई का मतलब होता है एनर्जी, एल का मतलब होता है लाइट, एफ का मतलब होता है फॉर्म। वी आर ऑल स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी यहां पे है जो सारे बॉडी को एनर्जी देती है। कोई कहता है फूड से एनर्जी मिलती है, फूड से एनर्जी मिलती है तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में फूड डालने से फूड बचेगा? आपके बॉडी में एनर्जी लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी कम है, कितना भी दवा खाएंगे वो पेट में जाके उल्टी हो जाएगा, पेट में डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, क्या काम करेगा वो? फूड से एनर्जी नहीं आती है, फूड जो आप लेते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी से डाइजेस्ट होती है। अगर आपका घर में मिक्सर और ग्राइंडर है और लो वोल्टेज है, क्या आपकी मिक्सर और ग्राइंडर मिक्सी चलेगी, मिक्सर चलेगा, ग्राइंड होगा, तो आपका पेट भी क्या है, मिक्सर और ग्राइंडर की तरह है। अगर आप में स्पिरिचुअल एनर्जी की लो वोल्टेज है तो क्या आपका पेट का मिक्सर ग्राइंडर चलेगा? नहीं चलेगा। फिर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनपच हो जाएगा, इनडाइजेस्ट हो जाएगा, और वो जाके आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन करेगा, तो सारी बीमारी किस चीज से हुई? लैक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। सेल्फ की एनर्जी जो बॉडी में होनी चाहिए, जितना वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी पूरा मशीन से ही तो बना है ना, सारा मशीन है। आपका आंख क्या है, वेब कैमरा की तरह है, ब्रेन कंप्यूटर की तरह है, हार्ट इंजन की तरह है, लंग्स ब्लोअर की तरह है, पेट मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, किडनी फिल्टर की तरह है, ये सारी मशीन है, कैसे चलेगी? किडनी क्यों फेल हो रहा है, किडनी में एनर्जी नहीं जा रही है, फेल हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। एनर्जी किसको भेजना है, आपको भेजना है ना। तो नेरोबिक्स और राजयोगा, राजयोगा क्यों है, ये ऐसा योग है जिससे आप खुद राजा बन करके अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। अभी आपका मन भागता है, आप बोलते हैं मेरा मन पता नहीं भाग रहा है, आपका मन भाग रहा है, पकड़ेगा कौन? हु इज गोइंग टू कैच योर माइंड? आपका मन है, आपका घोड़ा है, आप उस घोड़े पे सवारी कर रहे हो, किसकी मजा ले वो पकड़ ले, आपको ही गाइड करना पड़ेगा। कैसे गाइड करेंगे, जब घोड़ा बस में होगा तभी तो करेंगे। तो माइंड आपके बस में नहीं है तो माइंड की एनर्जी को कहां से चैनलाइज करेंगे? आज दुनिया किताब लिखती है पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अरे पावर तो है लेकिन पावर को कौन गाइड करेगा? Who is going to use that power? I am going to use that power. So I must be powerful. I must be the king of myself, my mind. जब हम king बनेंगे तभी तो प्रजा से काम कराएंगे। Mind क्या है, हमारा subject है, वो powerful है, powerful instrument है, लेकिन उस powerful instrument का use कौन करेगा? I will use. And when I lose, I'll become the king. इसलिए इसका नाम है राजयोग। तो नेरोबिक्स और राजयोग एक ऐसी विधि है जो आपको शरीर को नहीं, शरीर मन आत्मा तीनों को शक्तिशाली बनाती है, तन को तंदुरुस्त बनाती है, मन को मजबूत बनाती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। ये नेरोबिक्स राजयोग, क्योंकि जो परमात्मा से एनर्जी आती है, ब्रह्मांड से एनर्जी आती है, उसको टैप नहीं करते, سائنس کے پاس دم ہی نہیں ہے ٹیپ کرنے کے لیے, اور وہ انرجی ہمارے باڈی میں نہیں آتی ہے, اس لیے لو وولٹیج ہو جاتا ہے, ہماری باڈی نیگیٹولی چارج ہے. آپ دیکھیے باڈی دیکھیے, ایک چارج باڈی ہے, ایک ڈسچارج باڈی ہے, اس کا کنیکشن ہے انرجی سے, سورس سے, تو پاور فل سول ہے, شکتی شالی ہے. جو کل میں ایکسرسائز کرا رہا تھا نا آپ کو لال کا, ایسا ویژلائز کرنا ہے, دیکھیے چاروں طرف کیسے لال آ رہا ہے, اور اس کی نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹو انرجی چاروں طرف ہے, انرجی ریسیو ہی نہیں کر رہا ہے, اس کا ریسیپشن کم ہے, ویک ہے, ریسیپشن پاور, انرجی آئے گی نہیں, تو اس کے اندر کیا ہوگا, مشین چلے گی, بیماری ہوگی کہ نہیں ہوگی, ڈاکٹر کیا کرے گا, میڈیسن دے دے گا, انرجی تو نہیں دے گا نا, اس لیے ڈاکٹر پروفیشن بدنام ہو گیا, میڈیکل پروفیشن بدنام ہو گیا, کہ ڈاکٹر صاحب نے دوا ٹھیک نہیں, ارے ڈاکٹر صاحب تو دوا ٹھیک سے دیے, آپ کے لیے انرجی نہیں ہے دوا کو پچانے کے لیے, تو کیا ٹھیک ہوگا. اور ڈاکٹر کبھی کبھی جھوٹی دوائی بھی دیتے, پلیس وہ دے دیتے ہیں, بولتے ہیں بہت اچھی دوائی, آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے, اور اس کا وولٹیج ہائی ہو گیا تو جھوٹی دوائی بھی کام کر جاتی ہے, سب پیٹ درد سے درد غائب ہو جاتا ہے. تو کیور کرنے والا کون ہے, انرجی ہے, اسی انرجی کو ریسیو کرنا ہے.
ایک بہت چھوٹے سے کڑ ہے, ہم سب کی ایک ہی کھوج ہے, اچھا سواستھ, شانتی, گیان, سوبھاگیہ, شکتی, مطلب ہر سمے ہر حال میں سکھ اور شانتی کی کامنا, یہ پانے کے لیے ہر انسان کڑی محنت کرتا ہے, مگر کیا ہم اسے پا سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ حاصل کی جا سکتی ہے, یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم آتم گیان اور وشو شکتی کو سمجھ لیں. تو چلیے وشو شکتی کی ہم جانکاری لیتے ہیں. وشو شکتی پورے وشو میں موجود ہے, اس شکتی سے پورا تارا پنج, گرہ, منش, پرماڑو بندھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ موجود ہے, اس کا بندھن پورے وشو کو ویوستھت رکھتا ہے. وشو شکتی جیون شکتی ہے, دیویہ شکتی ہے, وشو شکتی ہمارے زندگی کے سنتولن اور چیتنا کے لیے ضروری ہے. وشو شکتی ہماری ہر کریا اور کام کی نیو ہے. خاموشی میں ہمیں تھوڑی سی وشو شکتی ملتی ہے. اس شکتی کا ہم اپنے روز کے دماغی کاموں میں استعمال کرتے ہیں, جیسے دیکھنا, بولنا, سننا, سوچنا اور شریر کے ہر کام. یہ تھوڑی سی شکتی ہمیں سوتے سمے ملتی ہے, جو ان سب کاموں کے لیے کافی نہیں ہے, اس لیے ہم تھک جاتے ہیں, تناؤ سے بھر جاتے ہیں, اس سے ہم شاریرک اور مانسک جھنجٹوں میں پھنس جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وشو شکتی ملنی ضروری ہے. وشو شکتی ضروری ہے ہمارے شریر کا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے, سکھی اور سوستھ جیون کے لیے, ہر کام اور موقع سے جوجھنے کے لیے, گیان حاصل کرنے کے لیے, और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है।
सुना आपने, जो विश्व शक्ति है, जो ईश्वर की ऊर्जा है, वो हमें तब मिलती है जब हम सोते हैं, तब मिलती है। इसलिए सोते हैं हम, वी स्लीप, क्योंकि दिन भर निगेटिव बातें आती रहती है। और एक कंडीशन है, जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप में एनर्जी है कि नहीं। और मन कब स्थिर होगा? जब आप सोएंगे तब। तभी तो परमात्मा को चांस देते हैं कि लो भाई कम से कम चार्ज कर दो बैटरी। दिन भर आप इंगेज रहते हैं, आपका टेलीफोन इंगेज रहता है, कहां से वो आपसे बात करे। इसलिए वो सपने में क्या करता है, सोते हैं तो चार्ज करता है। लेकिन आजकल नींद भी लोगों को नहीं आती, इतना स्ट्रेस है। थोड़ी सी बैटरी चार्ज होती है तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए भरपूर विश्व शक्ति लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, राजयोग करना पड़ेगा। तो जब चाहे तब आपको हम फील कराएंगे इस दो दिन में कि ईश्वरीय एनर्जी क्या होती है, हाउ यू विल एम्पावर योर सेल्फ फिजिकली। इंस्टेंट दो मिनट में आप ताकत फील करेंगे, सारा सिर दर्द गायब हो जाएगा आपका। आप फील करेंगे इस चीज को, अनुभव करेंगे ऐसी ईश्वरीय शक्ति आपको ताकत देती है, कैसे हीलिंग होती है, ऐसे क्योर होता है, इसको आप फील करेंगे। तभी हम दो एक्सरसाइज आज करेंगे, ठीक है, फिर उस शाम को भी एक्सरसाइज करेंगे, कल सुबह भी करेंगे, टोटल 8 एक्सरसाइज बताएंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, बताऊंगा आपको, आपको पहले बीमारी क्यों होती है उसको हम देख लेते हैं। पहले बीमारी क्यों होती है, क्योंकि जो एनर्जी आती है वो एनर्जी को हम आने ही नहीं देते, जब नहीं आने देते तब बीमारी होती है।
The inflow of cosmic energy is purely based on our thoughts. When we have thoughts, the inflow of cosmic energy is obstructed. In other words, our thoughts are the stumbling blocks for the inflow of cosmic energy. When the inflow of cosmic energy is less, the energy in the energy tubes depletes. This depletion causes etheric patches in the energy body. These etheric patches gradually lead to diseases in the physical body. In other words, root cause for all diseases is the lack of energy in the etheric body.
So, abhi hum kya karenge? Apne mind muscles ko majboot karenge aur जो एनर्जी है उसको, एनर्जी को लेने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी है ना, उधर से एनर्जी आई नहीं तो कहां होगा, पैचेज हो जाएंगे आपके बॉडी में। कोई भी गंदी चीज लग जाती है आप क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। दिन भर थक जाते हैं आप अपने शरीर को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। लेकिन मन में निगेटिव एनर्जी आ गई, किसी के बारे में गलत सोच लिया, किससे आ रही है, जलन आ रही है, उदासी आ गई है, वो कैसे साफ होगा? उसके लिए भी तो आपको नहाना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए शरीर को नहीं नहलाना पड़ेगा, किसको नहलाना पड़ेगा, माइंड को, मेंटल बात लेना पड़ेगा, माइंड स्पा करनी पड़ेगी आज के मॉडर्न लैंग्वेज में। उसी के लिए हमने एक नेरोबिक जिम का कंसेप्ट बनाया है कि इनविजिबल डॉक्टर्स की थेरेपी, वो कैसे हम नेरोबिक जिम में कर सकते हैं और कैसे हम एनर्जी ले सकते हैं। हम मुद्रा करेंगे, लेकिन मुद्रा के पहले, दो एक्सरसाइज के पहले मैं आपको मुद्रा का जस्ट ब्रीफ बताता हूं कि हमारी जो पांच उंगलियां हैं, पांच उंगलियां हमारे शरीर के जो पांच तत्व है उसको रिप्रेजेंट करती है। जो थंब है वो हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो मिडिल फिंगर है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हम अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा जल तत्व, ये पांच तत्व। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, इन उंगलियों को कंबाइन करने का मतलब हुआ हम तत्वों को कंबाइन करते। हमें ब्रीदिंग कैसे लेना चाहिए? ब्रीदिंग हमेशा डीप और कलरफुल होना चाहिए। जिस रोग को ठीक करना है, आप देखिए, डीप ब्रीदिंग।